इसलिए हम आपको सूचित कर रहे हैं। राम जी महाराज ने उनकी बात सुनी, कोई उत्तर दिया नहीं। राम जी ने सबका अभिवादन अभिनंदन किया और राम जी ने उनको भी विदा कर दिया। राम जी महाराज अपने कुटिया में आ गए और वे इस बात पर सोचने लगे कि खरदूषण वगैरह इतनी यहाँ उत्पात की बात करते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। खूब विचार किया महाराज राम ने। राम जी ने सोचा कि मैं यदि यहाँ रहता हूँ तो बाकी बचे हुए ऋषि मुनियों की रक्षा होगी, और यहाँ नहीं रहता हूँ तो जो यहाँ बचे हुए ऋषि है वो भी कहीं चले जाएंगे। तो कई निष्ठावान ऋषि थे, उन्होंने राम जी से कहा कि राम तुम हो तो हम यहाँ है, तुम नहीं हो तो हम भी चले जाएं। राम जी महाराज ने विचार किया कि यहाँ चित्रकूट पर भरत आए हैं, अयोध्या के लोग आए हैं, मंत्रीजन आए हैं, माताएं आई हैं, इन्होंने यहाँ आने का रास्ता देख लिया है। संभवतः कभी भरत का मन नहीं लगा और 8-10 दिन में एक बार चक्कर लगाने के लिए आएगा तो इससे और ज्यादा मोह बढ़ेगा। अयोध्यावासी भी कोई इकट्ठे होकर यहाँ आ गए तो मोह बढ़ेगा, और मुझे यहाँ उनके न रहने पर भी यहाँ भरत मिला था, यहाँ माताएं मिली थी, यहाँ गुरुजी मिले थे, ऐसे ये जगह अब याद आती है अपने परिवार को लेकर, तो फिर एकांत क्या हुआ। ये तो अयोध्या की स्मृति बनी रही। जगह जगह हाथियों की लीद पड़े रहने के कारण से जमीन अपवित्र भी हो गई, इसलिए अब अन्यत्र ही जाना उचित है। राम जी महाराज ने भी वहां से सबसे कह दिया कि मेरा अब यहाँ रहने का विचार नहीं, मैं यहाँ से रवाना होता हूँ। भगवान राम अत्रि के आश्रम में आए। अत्रि को पता चला कि राम जी आए हैं। ओह, तो वे बूढ़े ऋषि थे अत्रि, और उनकी पत्नी थी अनुसुया, बड़ी बूढ़ी। छोटे छोटे राम, लक्ष्मण और सीता, इन्होंने जाकर जब प्रणाम किया तो अत्रि ने उनको बहुत प्रेम से आशीर्वाद दिया और राम के कपोलों पर हाथ फेरते हुए उनको बड़े प्रेम से गले लगाया, पीठ पर हाथ रख के उनको आशीर्वाद दिया। और लक्ष्मण को तो खूब बड़े प्यार से सहलाते रहे, वाह बेटा बड़ा अच्छा किया तुम राम के साथ आए। और अनुसुया जी, उन अनुसुया जी के चरणों में जब सीता जी ने प्रणाम किया, अनुसुया जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। अत्रि ने कहा कि देखो राम, महान तपस्विनी अनुसुया है, धर्म का आचरण करने वाली है, सीता को इसकी सेवा में रखिए, इसके पास भेजिए। राम जी से कहने लगे कि देखो राम, यहाँ 10 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा था, हरदम गर्मी रहने से सारे संसार में त्राही त्राही मच गई। तब इसी अनुसुया ने यहाँ बड़ी कष्ट से तपस्या की थी, उस तपस्या के प्रभाव से ये मंदाकिनी गंगा यहाँ प्रकट हुई है। कैसा शांत निर्मल पवित्र जल है, ठंडा जल है, ये अनुसुया की तपस्या से आया है। देव कार्य निमित्तंच यया संत्वरमाणया दशरात्रम कृता रात्रि सेयम माते वते नघे। और देखो, ये अनुसुया है, ये तुम्हारी माता है, और ये विशेषता से तुम्हारे लिए काम करने वाली है, इसलिए सीता को इसके पास भेजना बहुत जरूरी है। देवताओं का कोई गुप्त कार्य है जो अनुसुया सीता के प्रति करवाएगी, इसलिए सीता से कहूं कि ये बड़े प्रेम से अनुसुया के पास जाए और इससे शिक्षा ले। राम जी महाराज ने सीता से कहा कि राजपुत्री, देखो तुम पर इन ऋषि की कैसी कृपा है, तुम जाओ अनुसुया के पास में बैठो और अनुसुईया के पास में बैठकर इन बड़े बूढ़ों से शिक्षा प्राप्त करो। बड़े बूढ़ों ने जीवन देखा है, जीवन, और उस जीवन का उनका अपना एक अनुभव होता है। उस अनुभव को तुम भी बिना इस उम्र के आए देख सकते हो। सीता अत्रि के कुटिया में गई जहां अनुसुईया जी विराजमान थी और अनुसुईया जी के पास जाकर बैठी। अनुसुईया जी ने सीता को देखा, देख करके अनुसुईया ने सीता का बड़ा स्नेह किया। सीता ने उनके चरणों में जब प्रणाम किया तो स्नेह से अनुसुईया जी के प्रेम से आंसू आए और अनुसुईया ने कहा कि बेटी, तुमने जो ये धर्म का काम किया है इससे मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तुमने जो राम का अनुवर्तन किया है इससे तुम्हारा संसार में बड़ा सम्मान होगा। संसार में पतिव्रता स्त्री के रूप में तुम्हारा नाम पहले ही पहले लिया जाएगा। देखो बेटा, अपना पति चाहे जंगल में रहे, चाहे नगर में रहे, चाहे सुखी अवस्था में रहे, चाहे दुखी अवस्था में रहे, स्त्री के लिए पति तो वास्तव में पति ही होता है। पति के अभ्युदय से पत्नी का अभ्युदय होता है और पति के दुर्भाग्य से पत्नी का दुर्भाग्य होता है। यदि अपना पति दुशील है, यदि अपना पति अच्छा आचरण वाला नहीं है, अपना पति यदि गरीब है, तो भी श्रेष्ठ स्वभाव वाली स्त्रियों के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा पुरुष, सबसे बड़ा भगवान वही होता है। अपने पति से बढ़कर वो संसार में किसी दूसरे को देख ही नहीं सकती है। आज मेरे में ये मंदाकिनी को प्रकट करने की शक्ति आई जो अभी महर्षि बता रहे थे, वो मेरे प्रताप से थोड़ी ही आई है, वो पति के प्रभाव से आई है। संसार में असत्य स्त्रियां होती है, जो अच्छी नहीं होती, वे अपने पति से, पति के अंदर गुण दोष देख करके, पति को अपने वश में रख करके, अपने हृदय के अनुसार उनको चलाने वाली होती है। असल में वे अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाती है। अकार्य वशमापन्ना स्त्रिया या खलु तद्विदा, ऐसी स्त्रियां ऐसा काम करती है कि जिससे कुल का गौरव समाप्त होता है। तुम्हारे जैसी जो स्त्रियां होंगी वो बहुत बड़े भारी पुण्य लोक में विराजमान होगी, जो केवल एक पति सेवा से ही ये स्थान प्राप्त कर लेंगी। तुम बड़ी पतिव्रता हो, बड़ी श्रेष्ठ हो, सती हो, समय देखकर काम करने वाली हो और अपने पति के साथ धर्म का आचरण करने वाली हो। बेटा, तुम्हारा यश बढ़े, तुम्हारा धर्म बढ़े। सीता ने कहा कि माता जी, आप जो बात बोलते हो ये बिल्कुल श्रेष्ठ बात है कि स्त्री का पति एकमात्र, स्त्री का गुरु एकमात्र पति ही होता है। पति से बढ़कर कोई दूसरा गुरु नहीं है। और आप जो बात बोलते, आश्चर्य की बात नहीं है, ये बात तो मैं पहले से ही जानती हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि गरीब यदि पति है, आचरण अच्छा भी नहीं है, तो भी श्रेष्ठ पत्नी को उसमें भेद नहीं देखना चाहिए। मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राम गुणों में श्रेष्ठ है, बड़े दयालु है, जितेंद्रिय है, इनका अनुराग स्थिर है और ये बड़े धर्मात्मा है, प्रजा का माता पिता के समान पालन करने वाले हैं। जैसा उनका कौशल्या में भाव है, ऐसा सभी राजा की स्त्रियों में, सभी राजा की रानियों में भाव है। माना दशरथ जी महाराज के प्रति बड़ा भाव है। सीता जी ने एक बहुत विचित्र बात कही है, बहुत श्रेष्ठ बात कही है। कि राजा दशरथ ने किसी भी स्त्री को यदि प्रेम दृष्टि से भी देखा है तो भगवान श्री राम ने अपना मान सम्मान छोड़कर उसको माता के समान समझकर उसका आदर किया है। मैं तो राम के वन में जाने की बात सुनकर के स्वयं ही अपने आप ही सोच ली कि मैंने तो यहां पर राम जी के लिए ही आना सीखा है, अतएव मैं स्वयं तैयार हो गई, राम जी के साथ में वन के लिए तैयार हो गई। कारण कि मैं जब बालिका थी, छोटी बच्ची थी, तो मुझे माँ ने यही शिक्षा दी और बड़ी हुई तो फिर मुझे सासू ने भी यही शिक्षा दी कि भाई तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पति ही होता है। अग्नि की साक्षी में जब मुझे राम के हाथों में सौंपा गया था तो उस समय मुझे माँ ने बहुत समझाते हुए अंत में यही बात कही कि स्त्री वही श्रेष्ठ होती है जो अपने पति की सेवा करती है। तपो नान्यत विधीयते, स्त्री के लिए अलग से कोई तपस्या का विधान नहीं है, अलग से कोई तपस्या करे ये नहीं है। मुझे सावित्री की कथा सुनाई कि पति की सेवा से वो यमराज पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग में चली गई थी और नारियों में वो नारी देवी के समान, देवता के समान है, वो रोहिणी के समान बड़ी श्रेष्ठ है जो पति का थोड़ा सा भी दुख नहीं सह सकती है। ऐसी स्त्रियां स्वर्ग के अंदर अनंत काल तक सुख भोगती रहती हैं। सीता के इन वचनों को सुनकर के अनुसुईया बड़ी प्रसन्न हुई और अनुसुईया ने कहा कि देख सीते बेटा, मेरे पास कई तपोबल की चीजें हैं, आज तक मैंने दी नहीं है, वो चीजें मैं तुम्हें देना चाहती हूं। हे सीते देखो, ये बहुत बढ़िया अंगराग है, इस अंगराग को अपने शरीर पर लगाओगे। देखो अंगराग क्या था, ये एक ऐसा पाउडर था, वो अभिमंत्रित पाउडर, माने वो उसको लगाने के बाद में इतना तेज हो जाता था उसमें कि बिना नहाए भी उनके शरीर में सुंदरता वैसी रहती थी। तो वो कहते हैं मेरी तपस्या से तैयार की हुई ये वस्तु है, इसमें बड़े भाव है, ये बड़ा दिव्य है, मेरे आभूषण जो मैं तुम्हें दे रही हूँ ये भी बड़े दिव्य आभूषण है, ऊपर से तो सोने के बने हुए हैं लेकिन इनमें एक दिव्यता छिपी हुई है। इन आभूषणों के पहनने के पश्चात स्त्री का पातिव्रत्य हर अवस्था में सुरक्षित रहता है। देखो ये अंगराग बड़ा विलक्षण है, महर्रम, ये बहुत कीमती है, हर जगह मिलने वाला नहीं है, ये तुम्हारे अनुरूप है, तो हम इस अंगराग को लगाओ, इन आभूषणों को पहनो और मैं जो तुमको बड़ी सुंदर माला दे रही हूँ इस माला को तुम पहन लो, तुम्हारी इससे बड़ी शोभा होगी और इससे आगे जाकर तुम्हें बड़ा लाभ होगा। देखो सीता का रावण स्पर्श करेगा, जबरदस्ती उसको ले जाएगा, तब भी उस अंगराग के प्रभाव से और उस आभूषणों के प्रभाव से सीता का तेज है वो समाप्त नहीं होगा, इसलिए अनुसुईया जी पहले से ही दे रही है। तो ये अंगराग वगैरह सब उन्होंने स्वीकार कर लिया और आभूषण भी स्वीकार कर लिए, अपने पास में उन वस्तुओं को रख लिया और अब अनुसुईया ने कहा कि बेटा एक बात मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारा स्वयंवर जब हुआ था राम के साथ में, तुम्हारा जैसे विवाह हुआ था वो विवाह का प्रसंग मेरे को सुनाओ, तुम विवाह का प्रसंग सुनाओ और तुम्हारे विवाह का प्रसंग मैं सुनूं, मैं उस कथा को विस्तार से सुनना चाहती हूँ बेटा। सामान्यतः तो मैंने सुनाई है कि राम जी ने तुमको स्वीकार कर लिया वो धनुष तोड़ने पर, लेकिन तुम इसको विस्तार से सुनाओ। सीता बड़ी खुश हुई, जैसे एक दादी के पास पोती बैठती हुई बोलती है ऐसे सीता उनको बहुत सुंदर लग रही थी और सीता की वाणी उनको बहुत अच्छी लग रही थी। तभी तो अनुसुईया ने कहा कि सीता तुम्हारे मुख से तुम कहो। तो सीता कहने लगी श्रूयताम, तो ठीक है माता जी आप सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए मिथिला देश के बड़े वीर राजा जनक जी महाराज हैं, वो शास्त्र कर्म में बड़े निष्णात हैं, वो पृथ्वी पर न्याय पूर्वक शासन करते हैं। एक बार वे किसी पवित्र यज्ञ को करने के लिए जमीन पर हल चला रहे थे। उस हल चलाने के कारण से उस हल में से, हल को जब जमीन में ही खोदा जाता है उसका नाम सीता होता है, तो जब वो हल को जमीन पर यूं लगाए हुए हल को चला रहे थे तो अकस्मात में जमीन से प्रकट हुई। महाराज उस समय में हल के अंदर यूं बीज डाल रहे थे, जमीन को जोतते हैं तो बीज डालते हैं, वो बीज डालने वाले थे। लेकिन मुझे छोटे से स्वरूप, मुझे जो मेरी छोटी अवस्था थी, बहुत ही छोटी कन्या, वो बालिका थी, मैं बालिका, तो उसको देख करके जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके कोई संतान तो थी नहीं। अकस्मात प्रकट हुई हुई देखकर सब काम छोड़कर उन्होंने मुझे गोद में लिया और गोद में लेकर अपने छाती से लगाया और कहा कि ममेयम तनया, ये मेरी लड़की है। इस प्रकार से कहकर मुझे बहुत प्यार दिया। और उस समय में आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये आपके पास अब प्रतिमा, मतलब बेजोड़ जो आपके पास बालिका आई है, ये दिखने में मनुष्य दिखती है, ये मनुष्य नहीं है, ये बड़ी दिव्य कन्या है, बालिका है, ये तुम्हारी धर्म की बेटी है, तुम उसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारा अभ्युदय होगा, कल्याण होगा। मेरे पिता बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद वे मेरे पिता मुझे लेकर अपनी सबसे बड़ी रानी जो थी उसके हाथ में दे दिया, सुनैना को दे दिया। सुनैना ने बड़े स्नेह से मेरा पालन किया। इस प्रकार माता पिता का मुझे बहुत बड़ा स्नेह मिला। मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई तो मेरे पिता की चिंता भी बड़ी होती गई। आप जानती हो माता जी कि कन्या का बड़ा होना माता पिता के लिए चिंता का कारण होता ही है। एक श्रेष्ठ पति को प्राप्त करने के लिए मेरे पिता के मन में इच्छा जागृत हुई। चिंताम अभ्यगमत दीनो वित्त नाशा दिवाधन है, जैसे कोई गरीब आदमी उसके पास में थोड़ा बहुत भी पैसा यदि नष्ट हो जाए तो उसको कैसे लगे, ऐसे हमारे पिता के मन में चिंता हुई। एक बार की बात है, हमारे पिता के पास में एक धनुष था, उस धनुष को कई लोग मिलकर के उठाते थे, जाने उनकी क्या मन में आई, उस धनुष को देखकर विचार आया कि जो व्यक्ति इस धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा, क्योंकि मेरी कन्या अयोनिजा है, ये दिव्य है, ये पृथ्वी में से प्रकट हुई है, इसलिए जैसी ये कन्या है वैसा ही इसके लिए वर होना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर किया और स्वयंवर के अंदर उसी वरुण देवता के द्वारा दिया हुआ वो जो धनुष था, उस धनुष को उन्होंने वहां रख दिया और लोगों के बीच में उन्होंने घोषणा कर दी कि इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता को प्राप्त करेगा। परंतु मनुष्यों की तो क्या कहे, कोई भी वहां उपस्थित थे किसी ने भी उसको उठाया तक नहीं, धनुष उसके ऊपर डोरी चढ़ाने की तो बात दूर, उसको कोई उठा भी नहीं सका। सब राजा लोग हार गए और हार करके भी अपने स्थान पर चले गए, लेकिन मेरे पिता की चिंता बढ़ती गई। एक बार मेरे पिता यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ के अंदर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर आए। धर्मात्मा विश्वामित्र ने मेरे पिता से कहा कि हे जनक, तुम्हारे पास एक धनुष रखा हुआ है, उसको राम और लक्ष्मण देखना चाहते हैं। यदि उचित समझते हो तो दशरथ के इन पुत्रों को आप अपना धनुष दिखा दीजिए। राजा के ऐसा आदेश, राजा के सामने ऐसा निवेदन करने पर राजा ने आदेश दिया और वो धनुष राम जी को दिखाया। राम जी ने उस धनुष को उठाया और देखते देखते उसके ऊपर ये डोरी बांधने के लिए जोर लगाया, इतने में वो तो बीच में से टूट गया और टूटने से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। उसके बाद मैं जब जनक जी महाराज के द्वारा राम जी के हाथ में सौंपी जाने लगी और जनक जी महाराज ने अपने हाथ में एक जल पात्र लेकर राम जी के हाथ में मुझे सौंपने का उपक्रम किया तो राम ने मना कर दिया। राम ने कहा कि देखिए, अभी हमारे पिता यहां उपस्थित नहीं है, मैं स्वतंत्रता से कैसे विवाह कर सकता हूं। राम की ये विनयशीलता जनक जी को बहुत बढ़िया लगी। बड़े आदर के साथ दशरथ जी महाराज को वहां बुलाया गया, बड़ा धूमधाम से उत्सव किया गया। उस उत्सव में राम को तो मुझे समर्पित किया, अरे एक मेरी छोटी बहन साध्वी उर्मिला है, उसको लक्ष्मण के लिए समर्पित किया। इस प्रकार से मुझे राम जी को सौंपा गया है, मैं राम जी के ऊपर अनुरक्त हूँ और उनके धर्म के साथ मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अनुसुईया ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी कथा सुनकर मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, तुम्हारा एक एक अक्षर स्पष्ट और साफ साफ है, ऐसी की ऐसी कथा मैंने पहले सुनी है, लेकिन तुम्हारे मुख से सुनने पर मुझे बहुत अच्छा लगा है। देखो सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, अब तुम विश्राम करो। और इस समय में महाराज महर्षि अत्रि जी भी अग्निहोत्र करेंगे और सायंकाल के अंदर कबूतर के जैसा रंग वाली काली काली रात आ रही है, तुम जाओ और अपने पति की सेवा में लगो। तुम देखो पहले मेरे सामने आभूषण पहन लो, ये अंगराग लगाओ और उसको उसके बाद अपने पति को ये सब बात बता देना। सीता जी ने वो सब अंगराग लगाया, आभूषण वगैरह सब पहन लिए और उसके बाद सीता जी राम जी के पास आई और राम जी को ये सब बात बता दी। राम जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी के भी आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। रात भर अत्रि और अनसुईया की प्रशंसा की बातें चलती रही। प्रातःकाल हुआ तो अत्रि के आश्रम में बहुत से ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। उन सब ऋषि मुनियों ने राम से निवेदन किया कि हे राम, इस वन में बहुत से राक्षस बहुत उपद्रव करते हैं, यहाँ बहुत से सर्प हैं, यहाँ ब्रह्मचारियों के तपस्वियों के यज्ञ को राक्षस लोग नष्ट करते हैं, यहाँ सिंह भी बहुत हैं, हाथी भी बहुत हैं, परंतु सबसे ज्यादा भय हमको राक्षसों से लगता है, इसलिए तुम इस दुर्गम मार्ग से जाओ, आगे जाकर महर्षियों का स्थान आएगा, लेकिन राक्षसों से सावधान होते हुए तुम चलना। इस प्रकार से ऋषि मुनियों से बात करते हुए राम जी महाराज अत्रि के आश्रम से रवाना हुए और वहां से रवाना होकर दंडकारण्य के एक भयंकर जंगल में प्रवेश किए। बहुत दूर आगे जाने के बाद उनको ऋषि मुनियों के कई आश्रम एक साथ बने हुए दिखाई दिए। सभी आश्रमों में काषाय वस्त्र सूख रहे थे, बहुत से प्राणी वहां बैठ करके कोई फल खा रहे हैं तो कोई जल पी रहे हैं। सब पशुओं को पक्षियों को वहां पर शांति मिलती थी। जगह जगह हर आश्रम में यज्ञ हो रहा था, जगह जगह यज्ञ के पात्र बिखरे हुए थे, फलों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। यज्ञ करने की सामग्री है जिसमें खास तो संविधाएं हैं, वे संविधाएं खूब हर आश्रम में प्रभुत मात्रा में थी। कहीं कहीं आश्रमों से उद्घोष हो रहा था, यज्ञ के समय मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। आश्रमों की लताओं के अंदर पुष्प के गुच्छे लगे हुए थे, फलों की पुष्पों की एक बहुत सुंदर सुगंध आ रही थी। काला मृगचर्म का वस्त्र पहने हुए ऋषि मुनि इधर उधर निर्भय होकर के घूम रहे थे। ऐसा एक तपस्वी आश्रम मंडल राम जी महाराज ने देखा और जितने ऋषि मुनि थे उन सब के चेहरे पर दिव्य ज्ञान प्रकट हो रहा था। वे सब ऋषि मुनि राम जी को देख रहे थे, लक्ष्मण को देख रहे थे, सीता को देख रहे थे। सीता ने, राम ने, लक्ष्मण ने उन सबको प्रणाम किया, सबने आशीर्वाद दिया। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे कि आप इस आश्रम में पधारिए, आप इस आश्रम में पधारिए, इस आश्रम में पधारिए। परंतु राम मर्जी आती उस आश्रम में चले जाते थे तो वहां पर सब के सब ऋषि मुनि इकट्ठे हो जाते थे और फिर राम जी दूसरे आश्रम में निकल जाते थे। ऐसे चलते चलते एक आश्रम में राम जी ने जाकर विश्राम किया तो वहां के ऋषि मुनि इकट्ठे होकर कहने लगे कि देखो राम, तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो, अशरणों के शरण हो, अनाथों के नाथ हो, बड़े दयालु हो और राजा हो। इंद्र का चौथा अंश राजा में होता है। राजा को श्रेष्ठ भोग इसलिए प्राप्त होते हैं कि वो अपने शरीर की चिंता न करे, उसको तो प्रजा की चिंता करनी चाहिए। हम लोग जंगल के अंदर बैठे हुए तपस्या करते हैं, हम लोग जितेंद्रिय हैं और जितक क्रोध है, हमारे ऊपर राक्षसों की बड़ी विपत्ति आती रहती है, तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि तपस्वी की रक्षा करना राजा का पहला काम है। इस प्रकार से निवेदन किया, राम जी के सामने फल फूल पुष्प निवेदन किए। राम जी महाराज ने उनकी बात सुनी और राम जी महाराज आगे के लिए रवाना हुए। आगे एक बहुत विचित्र जंगल आया। उस जंगल के अंदर नाना प्रकार के मृग हैं, ये इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते रहते हैं। सिंहों के गर्जने की आवाज आ रही है, रीछों के आवाज आ रही है, वृक्ष लता और गुल्म ये सब तोड़े हुए मालूम दे रहे हैं और निकुंजमान शकुनी पक्षी जगह जगह उड़ते हुए कुंजन कर रहे हैं, भौरे हैं और ये आवाज कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने और सीता जी ने एक ऐसा जंगल देखा जो घोर जंगल है, वहां पशुओं के अलावा कोई भी नहीं है। राम जी महाराज, लक्ष्मण, इन दोनों ने सीता को बीच में रख करके आगे के लिए प्रस्थान किया तो आगे उन्होंने एक बहुत विशाल शरीर वाले राक्षस को देखा। वो राक्षस जीभ निकाले हुए था, वो राक्षस बड़ी बड़ी दांतों वाला था, उस राक्षस का मुंह बहुत बड़ा था, बड़ा डरावना मुख था, उसके बाल यूं खड़े हुए थे, लाल लाल उसके बाल थे ताम्र वर्ण के समान और उसने व्याघ्र चर्म पहन रखा था। शरीर के ऊपर जगह जगह मांस के और मज्जा के चिन्ह थे, माने पशुओं को मारने से वो जो खून निकलता था, मांस निकलता था, जगह जगह उसके शरीर के ऊपर छपका लगा हुआ था। त्रासनम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों को वो डराता था। उसके पास में एक लोहे का शूल था, त्रिशूल। ध्यान देना, उस त्रिशूल के अंदर तीन सिंह को मार रखा था, चार व्याघ्र को मार रखा था, दो भेड़ियों को मार रखा था, दस सुअर को मार रखा था, एक हाथी को उसने मार रखा था, और उसको लिए 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 वो जंगल के अंदर जा रहा था। वो उसका केवल कलेवा मात्र था, अभी भूख तो बाकी है। वो अपना कलेवा लिए हुए जा रहा था। अकस्मात राम लक्ष्मण और सीता को उसने देखा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के अपना त्रिशूल था, उस त्रिशूल को तो उसने रख दिया और झपट करके वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके और उसने सीता को अपने हाथ में ले लिया और राम और लक्ष्मण को यूं हाथ से धक्का लगाते हुए कहा, कौन हो तुम? इस जंगल में क्यों आए हो? ये दंडकारण्य है, धनुष।